पृष्ठ संख्या 335, पांच, पंडित रामचरित उपाध्याय। स्वर्गीय पंडित रामचरित उपाध्याय का जन्म संवत 1929 में गाजीपुर में हुआ था, पर पिछले दिनों में वह आजमगढ़ के पास एक गांव में रहने लगे थे। कुछ वर्ष हुए उनका देहांत हो गया। वे संस्कृत के अच्छे पंडित थे और पहले पुराने ढंग की हिंदी कविता की ओर रुचि थी। पीछे सरस्वती में जब खड़ी बोली की कविताएं निकलने लगीं, तब वे नए ढंग की रचना की ओर पृष्ठ संख्या 336 बढ़े और द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से बराबर उक्त पत्रिका में अपनी रचनाएं भेजते रहे। राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह इत्यादि अनेक कविताएं उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। छोटी कविताएं अधिकतर विदग्ध भाषण के रूप में हैं। रामचरित चिंतामणि नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखा है, जिसके कई एक प्रसंग बहुत सुंदर बन पड़े हैं, जैसे अंगद रावण संवाद। भाषा उनकी साफ होती थी और वैदग्ध के साथ चलती थी। अंगद रावण संवाद की पंक्तियां देखिए। कुशल रहना यदि है तुम्हें धनुष तो फिर गर्व न कीजिए, शरण में गिरिए रघुनाथ के, निबल के बल केवल राम हैं। सुन कपे यम इंद्र कुबेर की न हिलती रसना मम सामने, तदपि आज मुझे करना पड़ा मनुज सेवक से बकवाद भी, यदि कपे मम राक्षस राज का स्तवन है तुझसे न किया गया, कुछ नहीं डर है पर क्यों वृथा निलज मानव मान बढ़ा रहा। 6. पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न। दूसरे संस्कृत के विद्वान जिनकी कविताएं सरस्वती में बराबर छपती रहीं, झालरा पाटन के पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न हैं। सरस्वती के अतिरिक्त हिंदी के और पत्रों तथा पत्रिकाओं में भी ये अपनी कविताएं भेजते रहे। राजपुताने से निकलने वाले विद्या भास्कर नामक एक पत्र का संपादन भी इन्होंने कुछ दिन किया था। मालवा और राजपुताने में हिंदी साहित्य के प्रचार में इन्होंने बड़ा काम किया है। नवरत्न जी संस्कृत के भी अच्छे कवि हैं। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट एकांतवासी योगी का इन्होंने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। हिंदी में भी इनकी रचनाएं कम नहीं। कुछ पुस्तकें लिखने के अतिरिक्त अनुवाद भी कई पुस्तकों का किया है। रविन्द्र बाबू की गीतांजलि का हिंदी पद्यों में इनका अनुवाद बहुत पहले निकला था। माघ के शिशुपाल वध के दो सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से उन्होंने संवत 1985 में किया था। पहले ये ब्रजभाषा के कवितादि रस्ते थे, जिनमें कहीं कहीं खड़ी बोली का भी आभास रहता था। शुद्ध खड़ी बोली के भी कुछ कवित्त इनके मिलते हैं। सरस्वती में प्रकाशित इनकी कविताएं अधिकतर इतिवृत्तात्मक या गद्यवत हैं, जैसे मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना, ब्रह्मन तजो पुस्तक प्रेम आप, देता अभी हूँ यह राज्य सारा, कहे मुझे यों यदि चक्रवर्ती, ऐसा न राजन कहिए कहूँ मैं। 7. पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पांडे जी बहुत छोटी अवस्था से कविता करने लगे थे। संवत 1962 से इनकी कविताएं सरस्वती तथा और मासिक पत्रिकाओं में निकलने लगी थीं। इनकी रचनाएं कई ढंग की हैं, कथा प्रबंध के रूप में भी और फुटकल प्रसंग के रूप में भी। चित्तौड़ के भीम सिंह के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्याय के ढंग पर इन्होंने लिखी है। मृगी दुख मोचन में इन्होंने खड़ी बोली के सवैयों में एक मृगी का अत्यंत दारुण परिस्थिति का वर्णन सरस भाषा में किया है, जिससे पशुओं तक पहुंचने वाली इनकी व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। इनका हृदय कहीं कहीं पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है। यह भावुकता इनकी अपनी है। भाषा की गद्यवत सरल सीधी गति उस रचना प्रवृत्ति का पता देती है जो द्विवेदी जी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी, पर इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का वैसा स्वच्छ और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्त जी की उस समय की रचनाओं में मिलता है। कुछ पंक्तियाँ उद्धृत हैं। चढ़ जाते पहाड़ों में जाके कभी, कभी झाड़ों के नीचे फिरे बिचरे, कभी कोमल पत्तियाँ खाया करें, कभी मीठी हरी हरी घास चरें, सरिता जल में प्रतिबिंब लखें निज, शुद्ध कहीं जल पान करें, कहीं मुग्ध हो झरझर निर्झर से, तरुकुंज में जा तप ताप हरें। पृष्ठ संख्या 337। रहती जहां शाल रसाल तमाल के, पादपों को अधिक छाया घनी, चरके तृण आते थके वहां, बैठते थे मृग और उसकी घरनी, पगुराते हुए दृग मूंदे हुए, वे मिटाते थकावट थे अपनी, खुरसे कभी कान खुजाते कभी सिर सिंह पे धारते थे टहनी मृगी दुख मोचन। सुमन विटप वल्ली काल की क्रूरता से झुलस जब रही थी ग्रीष्म की उग्रता से उस कुसुमय में हा भाग्य आकाश तेरा ऐ नवलतिके था घोर आपत्ति घेरा अब तब बुझता था जीवना लोक तेरा यह लख उर होता दुख से दग्ध मेरा। इन प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त और ना जाने कितने कवियों ने खड़ी बोली में फुटकल कविताएं लिखी जिन पर द्विवेदी जी का प्रभाव स्पष्ट झलकता था। ऐसी कविताओं से मासिक पत्रिकाएं भरी रहती थीं। जो कविता को अपने से दूर की वस्तु समझते थे वे भी गद्य में चलने वाली भाषा को पद्यबद्ध करने का अभ्यास करने लगे। उनकी रचनाएं बराबर प्रकाशित होने लगीं। उनके संबंध में यह स्पष्ट समझ रखना चाहिए कि वे अधिकतर इतिवृत्तात्मक गद्य निबंध के रूप में होती थीं। फल इसका यह हुआ कि काव्य प्रेमियों को उसमें काव्य तो नहीं दिखाई पड़ता था और ये खड़ी बोली की अधिकांश कविता को तुकबंदी मात्र समझने लगे थे। आगे चलकर तृतीय उत्थान में इस परिस्थिति के विरुद्ध गहरा प्रतिवर्तन रिएक्शन हुआ। यहाँ तक तो उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से अथवा उनके आदर्श के अनुकूल रचनाएं की, पर इस द्वितीय उत्थान के भीतर अनेक ऐसे कवि भी बराबर अपनी वाग्धारा बहाते रहे जो अपना स्वतंत्र मार्ग पहले से निकाल चुके थे और जिन पर द्विवेदी जी का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि। द्विवेदी जी के प्रभाव से हिंदी काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया उसके अतिरिक्त और अनेक रूपों में भी भिन्न भिन्न कवियों की काव्य धारा चलती रही। कई एक बहुत अच्छे कवि अपने अपने ढंग पर सरस और प्रभावपूर्ण कविता करते रहे जिनमें मुख्य राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित नाथुराम शंकर शर्मा, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित सत्यनारायण कवि रत्न, लाला भगवान दीन, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पंडित रूप नारायण पांडे हैं। इन कवियों में से अधिकांश तो दो रंगी कवि थे जो ब्रज भाषा में तो श्रृंगार वीर भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता कवित्व सवैयों या गेय पदों में करते आते थे और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते थे। बात यह थी कि खड़ी बोली का प्रचार बराबर बढ़ता दिखाई देता था और काव्य के प्रवाह के लिए कुछ नई नई भूमियाँ भी दिखाई पड़ती थी। देश दशा, समाज दशा, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि ही तक नई धारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों की ओर भी बढ़ी पर गहराई के साथ नहीं। त्याग, वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पद्यबद्ध हुए जिनके बीच बीच में जन्मभूमि प्रेम, स्वजाति गौरव, आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जोशीले भाषण रखे गए। जीवन की गूढ़ मार्मिक या रमणीय प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध की ओर दिया। दार्शनिकता का पुट राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाओं में कहीं कहीं दिखाई पड़ता है पर किसी दार्शनिक तथ्य को हृदय ग्राह रसात्मक रूप देने का प्रयास उनमें भी नहीं पाया जाता। उनके वसंत वियोग में भारत दशा सूचक प्राकृतिक विभूति के नाना चित्रों के बीच बीच में कुछ दार्शनिक तत्व रखे गए हैं और अंत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के लिए कर्म योग और भक्ति का आदेश दिलाया गया है। पृष्ठ संख्या 338। प्रकृति वर्णन की ओर हमारा काव्य कुछ अधिक अग्रसर हुआ पर प्रायः वहीं तक रहा जहां तक उसका संबंध मनुष्य के सुख सौंदर्य की भावना से है। प्रकृति के जिन सामान्य रूपों के बीच नर जीवन का विकास हुआ है, जिन रूपों से हम बराबर घिरे रहते आए हैं, उनके प्रति यह राग या ममता ना व्यक्त हुई जो चिर सहचरों के प्रति स्वभावतः हुआ करती है। प्रकृति के प्रायः वे ही चटकीले भड़कीले रूप लिए गए जो सजावट के काम के समझ गए। सारांश यह कि जगत और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने में वाणी वैसी तत्परना दिखाई पड़ी। 8. राय देवी प्रसाद पूर्ण। पूर्ण जी का उल्लेख पुरानी धारा के भीतर हो चुका है। वे ब्रजभाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे और जब तक जीवित रहे अपने रसिक समाज द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल पहल बनाए रहे। उक्त समाज की ओर से रसिक वाटिका नाम की एक पत्रिका निकली थी जिसमें उस समय के प्रायः सब ब्रजभाषा कवियों की सुंदर रचनाएं छपती थीं। जब संवत 1977 में पूर्ण जी का देहावसान हुआ उस समय उक्त समाज निर्वलंब सा हो गया और रसिक समाजी वह चकोर चहु और हेरे कविता को पूरन कला निधि कित गयो रत्नेश। पूर्ण जी सनातन धर्म के बड़े उत्साही अनुयायी तथा अध्ययनशील व्यक्ति थे। उपनिषद और वेदांत में उनकी अच्छी गति थी। सभा समाजों के प्रति उनका बहुत उत्साह रहता था और उसके अधिवेशनों में वे अवश्य कोई न कोई कविता पढ़ते थे। देश में चलने वाले आंदोलनों जैसे स्वदेशी को भी उनकी वाणी प्रतिध्वनित करती थी। भारतेंदु, प्रेमघन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में भी देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक प्रयत्नों में अवरोध या विरोध का बल नहीं आया था और लोगों की पूरी तरह धड़क नहीं खुली थी। अतः उनकी रचना में यदि एक ओर स्वदेशी पर देशभक्ति पूर्ण पद्य मिले और दूसरी ओर सन 1911 वाले दिल्ली दरबार के ठाट बाट का वर्णन, तो आश्चर्य न करना चाहिए। प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी पहले नूतन विषयों की कविता भी ब्रजभाषा में करते थे, जैसे विगत आलस की रजनी भई, रुचिर उद्यम की द्युति छह गई, उदित सूरज है नव भाग को, अरुण रंग भय अनुराग को, तजी बिछौनन को अब भागिए, भरत खंड प्रजागण जागिए। इस प्रकार संग्राम, निंदा आदि अनेक विषयों पर उनकी रचनाएं ब्रजभाषा में ही हैं। पीछे खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी रचना उन्होंने खड़ी बोली में भी की, जैसे अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन 1910 का स्वागत, नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत इत्यादि। स्वदेशी, देशोद्धार आदि पर उनकी अधिकांश रचनाएं इतिवृत्तात्मक पद्यों के रूप में हैं। बसंत वियोग बहुत बड़ी कविता है जिसमें कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती है। उसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। प्राचीन काल में यह उद्यान सत्व गुण प्रधान तथा प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था और इसके माली देव तुल्य थे। पीछे मालियों के प्रमाद और अनेक से उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ यशस्वी महापुरुष विक्रमादित्य ऐसे कुछ काल के लिए उसे संभालते दिखाई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती ही जाती है। अंत में उसके माली साधना और तपस्या के लिए कैलाश मानसरोवर की ओर जाते हैं, जहां आकाशवाणी होती है कि विक्रम की 20वीं शताब्दी में जब पश्चिमी शासन होगा तब उन्नति का आयोजन होगा। अमलतास नाम की छोटी सी कविता में कवि ने अपने प्रकृति निरीक्षण का भी परिचय दिया है। ग्रीष्म में जब वनस्थली के सारे पेड़ पौधे झुलसे से रहते हैं और कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती है, उस समय अमलतास चारों ओर फूल कर अपनी पीत प्रभा फैला देता है। इससे कवि भक्ति के महत्व का संकेत ग्रहण करता है। देख तव वैभव द्रुमकुल संत, विचारा उसका सुखद निदान, करे जो विषम काल को मंद, गया उस सामग्री पर ध्यान। पृष्ठ संख्या 339। रंगा निज प्रभु ऋतुपति के रंग, द्रुमो में अमलतास तू भक्त, इसी कारण निदाघ प्रतिकूल दहन में तेरे रहा अशक्त। पूर्ण जी की कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित हो चुका है। उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। नंदन वन का सुना नहीं है किसने नाम, मिलता है जिसमें देवों को भी आराम, उसके भी बासी सुख राशि, उग्र हुआ यदि उनका भाग, आकर के इस कुसुमा कर में करते हैं नंदन रुचि त्याग। है उत्तर में कोट शैल समतुंग विशाल, विमल सघन हिमवलित ललित धवलित सबकाल, हे नर दक्षिण इसके दक्षिण पश्चिम पूर्व, है अपार जल से परिपूरित कोश अपूर्व, पवन देवता गगन गंथ गगन पंथ से सुगन घटों में लाकर नीर, सींचा करते हैं यह उपवन करके सदा कृपा गंभीर, कर देते हैं बाहर भुनगो का परिवार, तब करते हैं कीश उदुम्बर का आहार, पक्षी गृह विचार तरुगण को नहीं हिलाते हैं गजवृंद, हंस भृंग हिंसा के भय से छाते नहीं बंद अरविंद, धेनु वत्स जब छक जाते हैं पीकर छीर, तब कुछ दूते हैं गौओं को चतुर अहीर, लेते हैं हम मधुकोशों से मधु जो गिरे आप ही आप, मक्खी तक निदान इस थल की पाती नहीं कभी संताप। बसंत वियोग। सरकारी कानून का रखकर पूरा ध्यान, कर सकते हो देश का सभी तरह कल्याण, सभी तरह कल्याण देश का कर सकते हो, करके कुछ उद्योग सोग सब हर सकते हो, जो हो तुम में जान आपदा भारी सारी, हो सकती है दूर नहीं बाधा सरकारी। 9. पंडित नाथुराम शंकर शर्मा। इनका जन्म संवत 1916 में और मृत्यु 1989 में हुई। ये अपना उपनाम शंकर रखते थे और पद्य रचना में अत्यंत सिद्ध हस्त थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के वे साथियों में थे और उस समय के कवि समाजों में बराबर कविता पढ़ा करते थे। समस्या पूर्ति वे बड़ी ही सटीक और सुंदर करते थे, जिनसे उनका चारों ओर पदक, पगड़ी, दुशाले आदि से सत्कार होता था। कवि व चित्रकार, काव्य सुधाधर, रसिक मित्र आदि पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियां और ब्रजभाषा की कविताएं बराबर निकला करती थीं। छंदों के सुंदर नपे तुले विधान के साथ ही उनकी उद्भावनाएं भी बड़ी अनूठी होती थीं। वियोग का यह वर्णन पढ़िए। शंकर नदी नद नदीसन के निरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएंगी, पृष्ठ संख्या 340। दोनों ध्रुव छोरन लौ पल में पिघल कर, धूम धूम धरनी धुरी सी बढ़ जाएगी, झारेंगे अंगारे ये तरनी तारे तारापति, जारेंगे खमंडल में आग मढ़ जाएगी, काहो विधि विधि की बनावट बचेगी नाही, जोपे वा वियोगिनी की आह कढ़ जाएगी। पीछे खड़ी बोली का प्रचार होने पर वे उसमें भी बहुत अच्छी रचना करने लगे। उनकी पदावली कुछ उदंडता लिए होती थी। इसका कारण यह है कि उनका संबंध आर्य समाज से रहा, जिसमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के उग्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जागृत रही। उसी अंतर्वृत्ति का आभास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। गर्भ रंडा रहस्य नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य उन्होंने विधवाओं की बुरी परिस्थिति और देव मंदिरों के अनाचार आदि दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। उसका एक पद्य देखिए। फैल गया हुरदंग होलिका की हलचल में, फूल फूल कर फाग फला महिला मंडल में, जननी भी तजलाज बनी ब्रज मक्खी सबकी, पर मैं पिंड छुड़ाए जवनिका में जा दबकी। फप्तियां और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। फैशन वालों पर कही हुई ईश गिरिजा को छोड़ी ईशु गिरिजा में जाए वाली प्रसिद्ध फप्ती इन्हीं की है। पर जहाँ इनकी चित्रवृत्ति दूसरे प्रकार की रही है, वहाँ की उक्तियाँ बड़ी मनोहर भाषा में हैं। यह कविता ही लीजिए। तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी, मंगल मयंक मंद मंद पड़ जाएंगे, मीन बिन मारे मर जाएंगे सरोवर में, डूब डूब शंकर सरोज सड़ जाएंगे, चौक चौक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे मृग, खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जाएंगे, बोलो इन अखियों की होड़ करने को अब कौन से अड़ीले उपमान रह जाएंगे। 10. पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये हिंदी के एक बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि हैं। ये पुरानी और नई दोनों चाल की कविताएं लिखते हैं। इनकी बहुत सी कविताएं त्रिशूल के नाम से निकली हैं। उर्दू कविता भी इनकी बहुत ही अच्छी होती है। इनकी पुरानी ढंग की कविताएं रसिक मित्र, काव्य सुधानिधि और साहित्य सरोवर आदि में बराबर निकलती रही। पीछे इनकी प्रवृत्ति खड़ी बोली की ओर हुई। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन। इस मैदान में भी इन्होंने अच्छी सफलता पाई। एक पद्य नीचे दिया जाता है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शूद्र हूँ, तू है महासागर अगम मैं एक धारा शूद्र हूँ, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ, तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। 11. पंडित राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी का नाम भी खड़ी बोली की कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्य भाषा में लाघव के लिए कुछ कारक चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना भी, जैसे कर रहा है के स्थान पर कर रहा या करते हुए के स्थान पर करते, ये ठीक नहीं समझते। कार्यक्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता का आभास पंडित श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी ही दिखाई पड़े। मिलन, पथिक और स्वप्न नामक पृष्ठ संख्या 341, इनके तीनों खंड काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्म पथ पर चलती है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बंधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। कल्पित आख्यानों की ओर यह विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग का अभिलाषा सूचित करता है। इन प्रबंधों में नर जीवन जिन रूपों में ढलकर सामने लाया गया है, ये मनुष्य मात्र का मर्म स्पर्श करने वाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छंद और रमणीय प्रसार के बीच अवस्थित होने के कारण शेष सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते। स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आती थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। त्रिपाठी जी के उपर्युक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं। देशभक्ति का यह भाव उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई क्षेत्रों में सौंदर्य प्रदान करता दिखाई पड़ता है, कर्म के क्षेत्र में भी, प्रेम के क्षेत्र में भी। वे पात्र कई तरफ से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं। त्रिपाठी जी ने भारत के प्रायः सब भागों में भ्रमण किया है, इससे इनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह आ सकी हैं। इनके पथिक में दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत विस्तृत समावेश है। इसी प्रकार इनके स्वप्न में उत्तराखंड और काश्मीर की सुषमा सामने आती है। प्रकृति के किसी खंड के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी है। सुंदर आलंकारिक सामने खड़ा करने में भी इनकी कल्पना प्रवृत्त होती है, पर झूठे आरोपों द्वारा अपनी उड़ान दिखाने का वैचित्र खड़ा करने के लिए नहीं। स्वप्न नामक खंड काव्य तृतीय उत्थान काल के भीतर लिखा गया है, जबकि छायावाद नाम की शाखा चल चुकी थी। इससे उस शाखा का भी रंग कहीं कहीं उसके भीतर झलक मारता है। जैसे प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। अतः उस काव्य को लेकर देखने से थोड़ी थोड़ी इनकी सब प्रवृत्तियां झलक जाती हैं। उसके आरंभ में हम अपनी प्रिया में अनुरक्त वसंत नामक एक सुंदर और विचारशील युवक को जीवन की गंभीर वितर्क दशा में पाते हैं। एक ओर उसे प्रकृति की प्रमोदमय सुषमाओं के बीच प्रियतमा के साहचर्य का प्रेम सुख लीन रखना चाहता है, दूसरी ओर समाज के असंख्य प्राणियों का कष्ट क्रंदन उसे उद्धार के लिए बुलाता जान पड़ता है। दोनों पक्षों के बहुत से सजीव चित्र बारी बारी से बड़ी दूर तक चलते हैं। फिर उस युवक के मन में जगत और जीवन के संबंध में गंभीर जिज्ञासाएं उठती हैं। जगत के इस नाना रूपों का उद्गम कहाँ है? सृष्टि के इन व्यापारों का अंतिम लक्ष्य क्या है? यह जीवन हमें क्यों दिया गया है? इसी प्रकार के प्रश्न उसे व्याकुल करते रहते हैं। और कभी कभी वह सोचता है, इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में मैं निश्वास बहता रहता हूँ, विमोहवश नहीं पहुँचता कहीं तीर पर। रात दिवस की बूंदों द्वारा तन घट से परिमित यौवन जल है निकला जा रहा निरंतर, यह रुक सकता नहीं एक पल। कभी कभी उसकी वृत्ति रहस्योन्मुक्त होती है। वह सारा खेल खड़ा करने वाले उस छिपे हुए प्रियतम का आकर्षण अनुभव करता है और सोचता है कि मैं उसके अन्वेषण में क्यों न चल पड़ूं। उसकी प्रिया सुमना उसे दिन रात इस प्रकार भावनाओं में ही मग्न और अव्यवस्थित देखकर कर्म मार्ग पर स्थिर हो जाने का उपदेश देती है। सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि अति उच्च विचार द्रव्य बल। मूल हेतु रवि के गौरव का है प्रकाश ही, न कि उच्च स्थल। मन की अमित तरंगों में तुम खोते हो इस जीवन का सुख। इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है और राजा उसे रोकने में असमर्थ होकर घोषणा करता है, पृष्ठ संख्या 342, की प्रजा अपनी रक्षा कर ले। इस पर देश के झुंड नवयुवक निकल पड़ते हैं और उनकी पत्नियां और माताएं गर्व से फूली नहीं समाती हैं। देश की इस दशा में वसंत को घर में पड़ा देख उसकी पत्नी सुमना को अत्यंत लज्जा होती है और वह अपने पति से स्वदेश के संकट के समय शस्त्र ग्रहण करने को कहती है। जब वह देखती है कि उसका पति उसी के प्रेम के कारण नहीं उठता है, तब वह अपने को ही प्रिय के कर्तव्य पथ का बाधक समझती है। वह सुनती है कि एक रुग्णा वृद्धा यह देखकर कि उसका पुत्र उसी की सेवा के ध्यान से युद्ध पर नहीं जाता है, अपना प्राण त्याग कर देती है। अंत में सुमना अपने को वसंत के सामने से हटाना ही स्थिर करती है और चुपचाप घर से निकल पड़ती है। वह पुरुष वेश में वीरों के साथ सम्मिलित होकर अत्यंत पराक्रम के साथ लड़ती है। उधर वसंत उसके वियोग में प्रकृति के खुले क्षेत्र में अपनी प्रेम वेदना की पुकार सुनाता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेम क्षेत्र से दूर थी। अर्ध निशा में तारा गण से प्रतिबिंबित अति निर्मल जलमय नील झील के कलित कूल पर मनोव्यथा का लेकर आश्रय, नीरवता में अंतस्थल का मर्म करुण स्वर लहरी में भर, प्रेम जगाया करता था वह विरही विरह गीत गा गा कर, भोज पत्र पर विरह व्यथा में अगणित प्रेम पत्र लिख लिख कर डाल दिए थे उसने गिरी पर नदियों के तट पर वन पथ पर सुमना के लिए दूर थे ये वियोग के दृश्य कदम्बक, और न विरही की पुकार ही पहुंच सकी उसके समीप तक। अंत में वसंत एक युवक वास्तव में पुरुष वेश में सुमना के उद्बोध से निकल पड़ता है और अपनी अद्भुत वीरता द्वारा सबका नेता बनकर विजय प्राप्त करता है। राजा यह कहकर कि जो देश की रक्षा करे वही राजा उसको राज्य सौंप देता है, उसी समय सुमना भी उसके सामने प्रकट हो जाती है। सो देशभक्ति की भावना कैसे मार्मिक और रसात्मक रूप में कथा के भीतर व्यक्त हुई है, यह उपर्युक्त सारांश द्वारा देखा जा सकता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं, त्रिपाठी जी की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मर्म पथ पर चलने वाली है। इसका नाम गीत संग्रह करना इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है। अतः त्रिपाठी जी हमें स्वच्छंदतावाद के प्रकृत पथ पर दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। चारु चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर, बौर गंध से शिथिल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण कर, और सरक आती समीप है प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि, हृदय द्रवित होता है सुनकर शशिकर छूकर यथा चंद्रमणि, किंतु उसी क्षण भूख प्यास से विकल वस्त्र वंचित अनाथ गण, हमें किसी की छाह चाहिए कहते चुनते हुए अन्न कण, आ जाते हैं हृदय द्वार पर मैं पुकार उठता हूँ तक्षण, हाय मुझे धिक है जो इनका कर न सका मैं कष्ट निवारण, उमड़ घुमड़ कर जब घमंड से उठता है सावन में जलधर, हम पुष्पित कदम्ब के नीचे झूला करते हैं प्रतिवासर, तड़ित प्रभा या घन गर्जन से भय या प्रेमोद्रेक प्राप्त कर, वह भुजबंधन कस लेती है यह अनुभव है परम मनोहर, किंतु उसी क्षण वह गरीबिनी अति विषादमय जिसके मुंह पर घुने हुए छप्पर की भीषण चिंता के हैं घिरे वार इधर, जिसका नहीं सहारा कोई आ जाती है दृक के भीतर, मेरा हर्ष चला जाता है एक आह के साथ निकल कर। स्वप्न पृष्ठ संख्या 343। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिचरूं यही चाहता मन है, सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में है निमग्न नित भूमि अंक के सेवन में रक्षण में। पथिक मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। फुटकल 12। स्वर्गीय लाला भगवान दीन दीन जी के जीवन का प्रारंभिक काल उस बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था जहां देश की परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी बहुत कुछ बनी हुई है। उनकी रहन सहन बहुत सादी और उनका हृदय सरल और कोमल था। उन्होंने हिंदी के पुराने काव्यों का नियमित रूप में अध्ययन किया था, इससे वे ऐसे लोगों से कुड़ते थे जो परंपरागत हिंदी साहित्य की कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना केवल थोड़ी सी अंग्रेजी शिक्षा के बल पर हिंदी कविताएं लिखने लग जाते थे। बुंदेलखंड में शिक्षित वर्ग के बीच और सर्वसाधारण में भी हिंदी कविता का सामान्य रूप से प्रचार चला आ रहा है। ऋतुओं के अनुसार जो त्यौहार और उत्सव रखे गए हैं उनके आगमन पर वहाँ लोगों में अब भी प्रायः वही उमंग दिखाई देती है। विदेशी संस्कारों के कारण वह मारी नहीं गई है। लाला साहब वही उमंग भरा हृदय लेकर छतरपुर से काशी आ रहे। हिंदी शब्द सागर के संपादकों में वे भी थे। पीछे हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक हुए। हिंदी साहित्य की व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने के लिए काशी में उन्होंने एक साहित्य विद्यालय खोला जो उन्हीं के नाम से अब तक बहुत अच्छे ढंग पर चला जा रहा है। कविता में वे अपना उपनाम दीन रखते थे। लाल जी का जन्म संवत 1923 में और मृत्यु 1987 जुलाई 1930 में हुई। पहले वे ब्रजभाषा में पुराने ढंग की कविता करते थे। पीछे लक्ष्मी के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली की कविताएं लिखने लगे। खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चरित्र लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है। खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज इन्होंने प्रायः मुंशियाना ही रखा था। वह या छंद भी उर्दू के रखते थे और भाषा में चलते अरबी या फारसी शब्द भी लाते थे। इस ढंग के उनके तीन काव्य निकले हैं, वीर क्षत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न। लाला जी पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। बहुत से प्राचीन काव्यों की नए ढंग की टीकाएं करके उन्होंने अध्ययन के अभिलाषियों का बड़ा उपकार किया है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सत्सई आदि की इनकी टीकाओं ने विद्यार्थियों के लिए अच्छा मार्ग खोल दिया। भक्ति और श्रृंगार की पुराने ढंग की कविताओं में उक्ति चमत्कार वे अच्छा लाते थे। उनकी कविताओं के दोनों तरह के नमूने नीचे देखिए। सुनी मुनि कौशिक ते साप को हवाल सब, बाढ़ी चित करुणा की अजब उमंग है, पदरज डारी करे पाप सब चारी, करी नवल सुनारी दियो धामहु उतंग है, दिन भने ताही लखी जात पति लोक और उपमा अभूत को सुझानो नयो ढंग है। कौतुक निधान राम रज की बनाए रज्जु पदते उड़ाए ऋषि पतिनी पतंग है। पृष्ठ संख्या 344। वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। जो वीर श्रेयस गायने में है ढील दिखाता वह देश के वीरत्व का है मान घटाता। सब वीर किया करते हैं सम्मान कलम का वीरों का सुयश गान है अभिमान कलम का। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह नवीन बीन या नदी में दीन में है। 13 पंडित रूप नारायण पांडे। पांडे जी ने यद्यपि ब्रजभाषा में भी बहुत कुछ कविता की है पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिए ही यह अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत उपयुक्त विषय कविता के लिए चुना है और उसमें पूरी रसात्मकता लाने में समर्थ हुए हैं। इनके विषय के चुनाव में ही भावुकता टपकती है जैसे दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। इनकी कविताओं का संग्रह पराग के नाम से प्रकाशित हो चुका है। पांडित जी की वन विहंगम नाम की कविता में हृदय की विशालता और सरसता का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। दलित कुसुम की अन्योक्ति भी बड़ी हृदय ग्राहिणी है। संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों में खड़ी बोली को इन्होंने बड़ी सुघड़ाई से ढाला है। यहाँ स्थानाभाव से हम दो ही पद उद्धृत कर सकते हैं। अहह अधम आंधी आ गई तू कहाँ से, प्रलय बन घटासी छा गई तू कहाँ से। पर दुख सुख तूने हा न देखा न भाला, कुसुम अतखिला ही हाय यों तोड़ डाला। वन बीच बसे थे फंसे थे ममत्व में एक कपोत कपोती कहीं, दिन रात न एक को दूसरा छोड़ता ऐसे हिले मिले दोनों वहीं। बढ़ने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रही, कहने का प्रयोजन है इतना उनके सुख की रही सीमा नहीं। 14 पंडित सत्यनारायण कवि रत्न। खड़ी बोली की खरखराहट जो तब तक बहुत कुछ बनी हुई थी के बीच वियोगी हरि के समान स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण कवि रत्न जन्म सम्मत 1936 मृत्यु 1975 भी ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे। रीति काल के कवियों की परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर। ब्रज भूमि, ब्रज भाषा और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर ये मुझे वहाँ मिले थे। यहाँ की अत्यंत काली मिट्टी देख वे बोले, या माटी को तो हमारे कन्हैया न खाते। अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाकर भी उन्होंने अपनी चाल ढाल ब्रजमंडल के ग्रामीण भले मानसों की सी ही रखी। धोती, बगल बंडी और दुपट्टा, सिर पर एक गोल टोपी, यही उनका वेश रहता था। ये बाहर जैसे सरल और सादे थे भीतर भी वैसे ही थे। सादापन दिखावे के लिए धारण किया हुआ नहीं है, स्वभावता है। यह बात उन्हें देखते ही और उनकी बातें सुनते ही प्रकट हो जाती थी। बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत वे आगरे से 1.5 कोस पर ताजगंज के पास धांधुपुर गांव में ही रहे। उनका जीवन क्या था, जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। उनका जन्म और बाल्यकाल, विवाह और गार्हस्थ्य सब एक दुख भरी कहानी के संबद्ध खंड थे। वे थे ब्रज माधुरी में पगे जीव, उनकी पत्नी थी आर्य समाज के तीखेपन में पली महिला। इस विषमता की विरसता बढ़ती ही गई और थोड़ी ही अवस्था में कविरत्न जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। ब्रज भाषा की कविताएं वे छात्रावस्था से ही लिखने लगे थे। वसंतागमन पर वर्षा के दिनों में वे रसिये आदि ग्रामीण अपर ग्रामीणों में मिलकर निसंकोच गाते थे। सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताओं के बीच भी वे प्रसन्न और पृष्ठ संख्या 345 हसमुख दिखाई देते थे। उनके लिए उनका जीवन ही एक काव्य था, अतः जो बातें प्रत्यक्ष उनके सामने आती थी काव्य का रूप रंग देते उन्हें देर नहीं लगती थी। मित्रों के पास वे प्रायः पद्य में पत्र लिखा करते थे जिनमें कभी कभी उनके स्वभाव की झलक भी रहती थी, जैसे स्वर्गीय पद्म सिंह जी के पास भेजी हुई इस कविता में। जो मोसो हंसी मिले होत मैं तासु निरंतर चेरो, बस गुन ही गुन निरखत तिह मधि सरल प्रकृति को पेरो। यह स्वभाव को रोग जानिए मेरो बस कछु नाही, नित नव विकल रहत याही सो सहृदय बिछरन माही। सदा दारु योषित सम बेबस आज्ञा मुदित प्रमाने, कोरो सत्य ग्राम को वासी कहा तकल्लुफ जाने। किसी का कोई अनुरोध टालना तो उनके लिए असंभव था। यह जानकर बराबर लोग किसी न किसी अवसर के उपयुक्त कविता बना देने की प्रेरणा उनसे किया करते थे और वे किसी को निराश न करते थे। उनकी वही दशा थी जो उर्दू के प्रसिद्ध शायर ईशा की लखनऊ दरबार में हो गई थी। इससे उनकी अधिकांश रचनाएं सामयिक हैं और जल्दी में जोड़ी हुई प्रतीत होती हैं, जैसे स्वामी राम तीर्थ, तिलक गोखले, सरोजनी नायडू इत्यादि की प्रशस्तियाँ। लोक हितकर आयोजनों के लिए अपील, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लंबी अपील देखिए। दुख और अन्याय के निवारण के लिए पुकार, कुली प्रथा के विरुद्ध पुकार देखिए। उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। उनकी ब्रजभाषा उसी स्वरूप में बंधी न रहकर जो काव्य परंपरा के भीतर पाया जाता है, बोल चाल के चलते रूपों को लेकर चली है। बहुत से ऐसे शब्दों और रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरागत काव्य भाषा में नहीं मिलते। उत्तर रामचरित और मालती माधव के अनुवादों में श्लोकों के स्थान पर उन्होंने बड़े मधुर सवैये रखे हैं। मकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का पद्यबद्ध अनुवाद उन्होंने बहुत पहले किया था। कविरत्न जी की बड़ी कविताओं में प्रेमकली और भ्रमरदूत विशेष उल्लेख योग्य हैं। भ्रमरदूत में यशोदा ने द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेश भेजा है। उसकी रचना नंददास के भ्रमर गीत के ढंग पर की गई है, पर अंत में देश की वर्तमान दशा और अपनी दशा का भी हल्का सा आभास कवि ने दिया है। सत्यनारायण जी की रचना के कुछ नमूने देखिए। अलबेली कहु बेली द्रुमंसो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई, चातक शुक कोयल ललित बोलत मधुरे बोल, कू की केकी कलित कुंजन करत किलोल, निरखी घन की घटा लखी वह सुषमा जाल लाल निज बिन नंदरानी, हरी सुधी उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी, सुधी बुधि तजी माथव पकरी करी करी सोच अपार, दृगजल मिस मानहु निकरी वही विरह की धार, कृष्ण रटना लागी कौने भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहराई जाई ताको यह लावे, त्यागी मधुपुरी को गयो छाणी सबन के साथ, सात समुन्दर पै भयो दूर द्वारका नाथ, जाइगो उहां। पृष्ठ संख्या 346। नित नव परत अकाल, काल को चलत चक्र चहूं, जीवन को आनंद न देख्यो जात यहां कहूं, बढ़्यो अथेच्छाचार कृत जहां देखो तह राज, होत जात दुर्बल विकृत दिन दिन आर्य समाज, दिनन के फेर सो जे तजी मातृभूमि सो समता होत प्रवासी, तिन्हें विदेशी तंग करत दे विपदा खासी, नारी शिक्षा अनादरत जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी, निरखी हाल मेरो प्रथम लेहु समझी अब कोई, विद्या बल लही मति परम अबला सबला होई, लखाओ अजमाई कै। भ्रमरदूत। भयो क्यों अनचाहत को संग, सब जग के तुम दीपक मोहन प्रेमी हमहु पतंग, लखी तब दीपति देह शिखा में निरत बिरह लौ लागी, खींचती आप सो आप उतही यह ऐसी प्रकृति अभागी, यद्यपि स्नेह भरी तव बतियां तव अचरज की बात, योग वियोग दऊन में एक समनित्य जरावत गात।